यशाया अध्याय 66, यशाया अध्याय 66 पद 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? वे एक नया मंदिर बनाने जा रहे थे, परंतु परमेश्वर कहता है, आवश्यकता नहीं है। ये वो मंदिर होगा जो वाचा बांधकर क्रिस्त विरोधी बनवाएंगे। यहोवा तो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यशाया अध्याय 66 पद 2। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। परमेश्वर कहता है, मुझे किसी घर की आवश्यकता नहीं है, मेरे निवास हेतु किसी आधुनिक भवन की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मुझे क्या दोगे? ये सब तो मेरा बनाया हुआ ही है। यही कारण है कि परमेश्वर को कुछ देना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं देने के नाम पर परमेश्वर को क्या दे सकता हूं? क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो सभी परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर के सामने क्या घमंड करूं कि मैं परमेश्वर को कुछ दे रहा हूं? मैं तो यही कह सकता हूं, प्रभु जो तेरा है वही मैं तुझे दे रहा हूं। तूने ही तो आदि में सब कुछ बनाया था। अब वे बलिदान जो वे प्रभु के फिर से आने से पहले ठहराएंगे, वे परमेश्वर को स्वीकार्य न होंगे। यशाया अध्याय 66 पद 3 और 4। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वो उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वो मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वो उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। परमेश्वर एक भ्रम उत्पन्न करेगा क्योंकि वे मसीह यीशु के सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर इनको क्रिस्त विरोधी के झूठ पर विश्वास करने के लिए भ्रम की अवस्था में डाल देगा। यीशु ने कहा था, यूहन्ना अध्याय 5 पद 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। वो इसराइल राष्ट्र के साथ एक वाचा बांधेगा और वे मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे जहां वे अपने बलिदान चढ़ाएंगे। परंतु परमेश्वर कहता है कि ये जहां तक मसीह का प्रश्न है ये अविश्वास है और उसे उससे कुछ सरोकार ना होगा। यशाया अध्याय 66 पद 4 और 5। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थर थराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े। जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। जब पौलुस कलीसिया को सता रहा था, तब उसके मन में ये विचार था कि वो यहोवा की सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर के नाम में ही ये सब कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, वे जो दूर किए गए हैं परमेश्वर के वचन पर थर थराते हैं। तुम्हारे भाई जो तुमसे घृणा करते थे, अब कहते हैं यहोवा की महिमा हो, वो जिससे हम तुम्हारे आनंद के लिए आएगा और वे लज्जित होंगे। यशाया अध्याय 66 पद 6 से लेकर 9 तक। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से शब्द सुनाई देता है। वो यहोवा का शब्द है, वो अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं खोख बंद करूं? दूसरे शब्दों में यहोवा कहता है, मैं तुम्हें यहां तक ले आया हूं, तो अब आगे पूरा नहीं करूंगा क्या? ऐसा सोचना कि परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी द्वारा दी गई योजना को रोक देगा, उसका चित्र मन में लाना भी असंगत सा प्रतीत होता है। वो प्रभु के राज्य के आने तक के युग में हमें ले आएगा, निश्चय ही वो ऐसा करेगा। यशाया 66 पद 10 से लेकर 16 तक। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यू कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी के बाढ़ समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर खुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी, तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होंगे, तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बावंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जल जलाहट के साथ और अपनी चेतौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करें। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। मैंने यहोवा के मारे हुओं के बारे में सुना है, यहां हम उनको देखते हैं। मैं प्रसन्न हूं कि हमने उसका बाइबल संदर्भ पा लिया है। यशाया अध्याय 66 पद 17 से लेकर 18 तक। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर व चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, परमेश्वर एक बार फिर पलटा लेने के दिन के विषय में कह रहा है और आने वाले न्याय की घोषणा कर रहा है। मनुष्यों का न्याय उनके घृणित कामों के आधार पर होगा, क्योंकि मैं उनके कामों को जानता हूं। यशाया अध्याय 66 पद 18 से लेकर 23 तक। और वो समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे, और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुधारी पुलियों और लूदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और जैसे इसराइली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों, सांडनियों पर चढ़कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे, यहोवा का यही वचन है। और उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। भविष्य में वो दिन अवश्य आएगा जब संपूर्ण सृष्टि का मेल फिर से परमेश्वर के साथ होगा, परंतु वे जो परमेश्वर के साथ विद्रोही जीवन जीने का चुनाव करते हैं और जो पहले से ही विद्रोह का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक अलग भविष्य रखा है। मेरे विचार में हमें बहुत सावधान रहना है कि हम परमेश्वर के वचन में फेर बदल ना करें, कि उसकी निष्पक्षता, न्याय और धार्मिकता के अपने विचारों के अनुरूप व्याख्या करें। हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो अर्थ रखता है उससे भिन्न उसका अर्थ निर्धारित करते हैं। अनंत दंड और अधर्मियों के विनाश के बारे में अत्यधिक निंदा की गई है। इस निंदा के कारण अनेक पास्टर नरक के विषय, परमेश्वर के न्याय के विषय, परमेश्वर के क्रोध के विषय, परमेश्वर के प्रकोप के विषय और देह के विषय चर्चा करते हुए घबराते हैं। यदि परमेश्वर स्वयं इन विषयों की चर्चा करता है और हम यदि चुप रहेंगे तो हम हंसी के पात्र होंगे, क्योंकि बाइबल का ये वचन है, इसलिए मनुष्यों को इसकी चेतावनी देना आवश्यक है। मैं नरक पर एक उपदेश देने की अपेक्षा स्वर्ग पर 10,000 उपदेश देने की इच्छा रखता हूं। मैं नरक के विषय में चर्चा करना ही नहीं चाहता, मैं नरक के विषय उपदेश देना ही नहीं चाहता, मैं परमेश्वर के प्रेम पर 1,000 उपदेश दे दूंगा, परंतु परमेश्वर के प्रकोप पर एक उपदेश भी नहीं देता। मुझे परमेश्वर के प्रेम पर उपदेश देना बड़ा अच्छा लगता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर उपदेश देना अधिक उचित मानता हूं, परमेश्वर की भलाई पर, परमेश्वर की आशीषों पर, ये मेरे प्रिय विषय है। मैं परमेश्वर का क्रोध, उसका पलटा लेना, दुष्टों का उसके द्वारा न्याय आदि विषय में मैं रुचि नहीं रखता हूं। परमेश्वर इन विषयों पर कहता है तो मैं तो उसका उद्घोषक हूं, अतः मुझे उनके विषय में कहना ही होगा। यही धर्म शास्त्र में चलता है। मैं किसी विषय को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैं यशया का अंतिम पद छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चाहता हूं कि यही समापन कर दूं। ये महिमा का समय होगा। संपूर्ण पृथ्वी की जातियां प्रभु की आराधना करेंगी और महिमा ही महिमा व्याप्त होगी। यशाया अध्याय 66 पद 24। तब वे निकलकर उन लोगों की लोतों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगा और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। जब यीशु आने वाले न्याय के विषय में कह रहा था तब उसने यही संदर्भ दिया था। लूका अध्याय 12 पद 4 और 5। जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है। मरकुस अध्याय 9 पद 44। नरक की आग जो कभी बुझने की नहीं। लूका अध्याय 12 पद 5। उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। इन वाक्यों में प्रभु ने नरक का उपयोग किया है, अर्थात वो स्थान जो अधर्मी मृतकों का अंतिम वास है। अधोलोक अधर्मी व्यक्तियों का अंतिम निवास स्थान नहीं है। अधोलोक के लिए लिखा है वो परमेश्वर के न्याय के श्वेत सिंहासन के सामने अपने मृतक दे देगा। मृत्यु और अधोलोक अपने मृतकों को दे देंगे, अतः अधोलोक खाली हो जाएगा। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में ना पाया जाएगा उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मृत्यु होगी जो नरक में होगी। नए नियम में नरक और अधोलोक में महान अंतर दर्शाया गया है। नरक दंडित जनों का अनंत निवास स्थान है। अब जब यीशु फिर आएगा तब वो समस्त जातियों को न्याय के लिए एकत्रित करेगा। वो चरवाहे के सदृश भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा। मत्ती अध्याय 25 पद 41 से 45। तब वो बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके स्वर्ग दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। देखिए कि आग की झील मनुष्यों के लिए तैयार नहीं की गई थी। वे मनुष्य जो शैतान का साथ देना चाहते हैं वे भी इसी आग के झील में डाले जाएंगे। और जैसी चेतावनी हमें प्रकाशित वाक्य में दी गई है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 11, उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। मैं इसमें फेर बदल करने का साहस नहीं करता हूं। मैं उसके प्रभाव को कम करके दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के सत्य को आधार्मिकता में बांधते हैं उनकी अभक्ति और आधार्मिकता का परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय अवश्य करेगा, और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। जो भी कहे मैं उसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता, मैं केवल धर्मशास्त्र की बात ही आप तक पहुंचा सकता हूं। मैं उसमें अंश मात्र परिवर्तन नहीं कर सकता। इन बातों के लिए परमेश्वर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। परमेश्वर ने कहा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 19, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डालें, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अतः मैं परमेश्वर के क्रोध को, इस दंड के प्रभाव को ना तो हटा सकता हूं या कम कर सकता हूं। ये न्याय अधर्मियों पर आएगा और अनंत होगा। यही कारण है कि हमारा मसीह में आचरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कि हम मसीह के लिए जीवन जिए, कि हम उसे अपना जीवन समर्पित करें और उसके राज्य का एक भाग बन जाए। अतः मैं दूसरी बातों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस समय पृथ्वी पर रहने की योजना नहीं बना रहा हूं। मत्ती अध्याय 6 पद 21, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरा मन मेरे प्रभु में और स्वर्ग की बातों में लीन है। मैं वही काम करना चाहूंगा, परंतु मैं अपने उत्तरदायित्व में परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में लापरवाह और कर्तव्य त्यागी होऊंगा यदि मैं आपको ये न जता दूं कि दूसरा पक्ष भी है और धर्मशास्त्र उसकी पुष्टि करता है। आप इसका निवारण नहीं कर सकते हैं। पिता, हम तुझे उस आशा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें मसीह यीशु में दी गई है, हमारी बुलाहट की आशा। हम तुझे यशया की भविष्यवाणियों की इन महिमा की बातों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आने वाली है। उस समय प्रभु का राज्य होगा, हम तब उसके साथ इस नई पृथ्वी पर धार्मिकता में वास करेंगे। प्रभु, हम तो यही प्रार्थना करते हैं, शीघ्र आ, अपना धर्म का राज्य स्थापित कर। हे प्रभु, कि हम इस महिमा के भागीदार हों जो संसार की सृष्टि से पूर्व पिता के साथ तेरी थी। प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे, अपने वचन को हमारे हृदय में आशीषित कर। तेरे वचन में हमारी आत्मिक यात्रा पोषित वो बलवंत बने। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे तथा आपका आने वाला समय आनंद से पूर्ण करें। वो आपको अपने प्रेम और अनुग्रह में स्थिर करें। हम उसके वचन के अध्ययन में जो भूतकाल और हमारे भविष्य की योजनाओं के विषय में है आपकी संगति की प्रतीक्षा करेंगे। परमेश्वर आपको मसीह यीशु में अवस्थित उसके प्रेम में स्थिर रखें और आपके आंतरिक मानव को अपनी आत्मा द्वारा दृढ़ रखें। वो आपको अपने प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई को समझने में सहायता करे और उन बातों को अधिकाधिक समझने में सहायता करे जो उसने उनके लिए तैयार की है जो उसे प्रेम रखते हैं और उसकी बाट जोते हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह को मसीह यीशु के द्वारा आपके लिए विपुल बनाएं।